निवेदन, सूर्य साहित्य मेरी पहली रचना है। आज से कोई 25 वर्ष पहले यह पुस्तक लिखी थी। उस समय साहित्य क्षेत्र में बहुत कुछ नया देने की उमंग थी और ऐसा विश्वास था कि जो कुछ लिख रहा हूँ सब प्रकार से नवीन और ग्राह्य है। इसीलिए भाषा में जहाँ एक प्रकार का आत्मविश्वास का गुण था, वहीं थोड़ा बहुत आक्रामक भाव भी आ गया था। आज यदि नए सिरे से इसी विषय पर लिखना पड़े तो इसकी भाषा शैली में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा और यह पुस्तक कदाचित उपयोगी तो अधिक हो जाएगी, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी भास्वरता है वह छिण हो जाएगी। पुस्तक बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी और कई प्रेमी पाठक इसको फिर से प्रकाशित करने के लिए आग्रह कर रहे थे। मेरा अनुमान है कि इस पुस्तक की भाषा और शैली इन पाठकों को अधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने पुस्तक को उसी रूप में प्रकाशित करना ही उचित समझा जिस रूप में यह प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। प्रथम संस्करण में जो छापे की गलतियां थी उन्हें सुधारने के अतिरिक्त सिर्फ उन स्थानों को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है जिनके बारे में मेरे विचार अब तक निश्चित रूप से बदल गए हैं। मुझे यह कहने में थोड़ी सी प्रसन्नता होती है कि ऐसे स्थल बहुत कम ही हैं। इस प्रकार यह पुस्तक प्रायः उसी रूप में प्रकाशित हो रही है जिस रूप में प्रथम बार छपी थी। जिन मित्रों ने बार बार आग्रह करके इस पुस्तक को फिर से प्रकाशित कराने की प्रेरणा दी है उनके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं सोचता था कि सूर साहित्य अगर छपना ही है तो उसका बिल्कुल कायाकल्प हो जाना चाहिए, क्योंकि इधर अनेक विद्वानों के परिश्रम के फलस्वरूप अनेक नई जानकारी प्राप्त हुई है और उनका समावेश किए बिना पुस्तक अधूरी ही मालूम होगी। परंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सूर्य साहित्य के कई विशेषज्ञ मित्रों ने भी इसे ज्यों का त्यों छापने के लिए ही आग्रह किया। मेरा भी इसके मूल रूप पर थोड़ा मोह है, इसलिए सहृदय पाठकों के सम्मुख अपनी इस बाल कृति को पुनः उपस्थित करने का साहस कर रहा हूँ। प्रथम संस्करण की भूमिका श्रद्धेय आचार्य छिटी मोहन सेन ने लिखी थी। वह भूमिका अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण कृति थी। उसमें उनके अगाध पांडित्य और सहृदयता का मणिकांचन योग तो है ही, मेरे प्रति जो स्नेह का भाव है वह भी उन्हीं के योग्य है। एक लंबी अवधि के बाद जब मैं उस भूमिका को पढ़ता हूँ तो मुझे अद्भुत आनंद और गौरव का बोध होता है। मैं मन ही मन इस बात के लिए लज्जा का अनुभव करता हूँ कि दीर्घ काल तक उनके संपर्क में रहकर भी मैं उनके स्नेह का उचित अधिकारी नहीं सिद्ध हो सका। लेकिन मैं अपने मन को समझा लेता हूँ कि स्नेह का मिलना भी कम सौभाग्य नहीं है। आज आचार्य पाद अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और अस्वस्थ भी हैं। आज भी उनका स्नेह मुझे उसी तरह प्राप्त है। पुस्तक का पुनः मुद्रण देखकर उन्हें जितनी प्रसन्नता होगी उतनी शायद दूसरे को न हो। इस अवसर पर उनके प्रति मैं अपनी सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। पंडित नाथुराम जी प्रेमी ने पुस्तक को फिर से प्रकाश में लाने में सर्वाधिक प्रेरणा दी है। यदि उनका आग्रह न होता तो कदाचित पुस्तक न छपती। मेरी आरंभिक रचनाओं को उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया था और पुस्तक को भी विस्मृति के गड्ढे में गिरने से उन्होंने ही बचा लिया है। पुस्तक की छपाई का वे पूरा ध्यान रखते हैं और मैं निश्चित जानता हूँ कि उनके प्रति कृतज्ञता के दो शब्द भी लिख दूंगा तो वे अवश्य काट देंगे। इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यंजक कुछ भी न लिखकर चुपचाप अपनी हार्दिक श्रद्धा और प्रीति के भाव निवेदन करता हूँ। सूरदास भारतीय साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रत्नों में है। जिस प्रसंग को उन्होंने उठाया है उसके बारे में सब कुछ कह दिया है। अपने वक्तव्य विषय के साथ ऐसी तन्मयता संसार के कुछ थोड़े कवियों में ही मिल सकती है। जिन दिनों मैंने इस पुस्तक को लिखा था उन दिनों इस महान भक्त की कविता का नशा था। जो जो अवस्था बढ़ती गई त्यों त्यों अनेक प्रपंचों में उलझता गया हूँ। जीवन में काव्य चर्चा के बहाने जिन भक्त रत्नों की रचनाओं में मन रमा रहता था उनसे दूर हट गया हूँ। पुरानी बातों को पढ़ता हूँ तो हृदय में एक प्रकार की पीड़ा का अनुभव करता हूँ। कहाँ से शुरू किया और कहाँ आ गिरा हूँ। जो होना चाहा था वह नहीं हो सका, जो सोचा भी नहीं था उसके चक्कर में फंस गया हूँ। भक्तों के साहित्य में जो अपूर्व तन्मयता दिखाई देती है वह किसी महान अज्ञात के चरणों में अहेतुक आत्मसमर्पण के उल्लास से अनुप्राणित है। जब तक आत्मदान का अद्भुत उल्लास जीवन में नहीं आता तब तक कोई बड़ा साहित्य नहीं लिखा जा सकता। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जैसे भक्त कवियों के साहित्य में जिस प्रकार के माधुर्य, तेजस्विता और मंगल का साक्षात्कार होता है वे उसी महिमामयी दातृत्व शक्ति की उपज है। जो जितना देता है उतना ही पा जाता है। यही जीवन में सत्य है, यही साहित्य में भी सत्य है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पिछले 25 वर्षों के साहित्यिक जीवन से मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ कि उस दातृत्व शक्ति के अभाव में हमारा साहित्य दुर्बल होता जा रहा है। मैं निराश होने को बुरा समझता हूँ, गलतियों और कमजोरियों को मनुष्य जीवन का इतना बड़ा अभिशाप नहीं मानता कि उसकी चिंता में व्याकुल हो उठूं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि त्रुटियां और विच्युतियां जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाने में सहायक होती हैं। शर्त यह है कि हम इन्हें ही जीवन का अंतिम लक्ष्य न बना लें। परंतु यह सोचकर मैं अवश्य विचलित हो जाता हूँ कि हमारे साहित्य में देने की लगन के स्थान पर पानी की स्पृहा अधिक बलवती हो उठी है। सूरदास के उत्तराधिकारियों के लिए यह बहुत गौरव की बात नहीं कही जा सकती। हमारे साहित्य की महिमा संतों के अपूर्व दायित्व शक्ति में है। इन संतों में अपने आप को ही दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी दिन हमारे नए साहित्य में ऐसी तेजस्विता आएगी जो संसार को प्रकाश दे सके, तो वह इन्हीं संतों के आदर्श पर चलने वाले साहित्यिकों के द्वारा ही संभव हो सकेगी। आज ही हमारे नए साहित्य में जहाँ कहीं तेज है, वहाँ वह आत्मदानी संतों के आदर्श पर चलने वाले साहित्य सर्जकों के तप का ही फल है। भक्तिकाल के साहित्यकारों के ज्योतिषक मंडल को देखकर भरोसा होता है कि हम नए युग में भी नई चेतना को जागृत करने योग्य साहित्य अवश्य उत्पन्न कर सकेंगे। अभी यदि इतनी उल्लसित होने योग्य अवस्था नहीं आ सकी है तो यह क्षण स्थायी शैथिल्य ही है। आज अपने आप को देखकर मेरे चित्त में जो ग्लानी का भाव आया है, यह भी कोई बुरा लक्षण नहीं है। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बहाने आत्मनिरीक्षण का जो अवसर मिल गया, वह भी किसी पुराकृत पुण्य का ही फल है। भक्त प्रवर सूरदास के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदन करते समय मुझे इस अवसर के मिलने का सुख भी हो रहा है और कृतज्ञता के भाव भी उदय हो रहे हैं। आशा करनी चाहिए कि भक्त कवियों का बार बार स्मरण हमें उचित मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। फाल्गुनी पूर्णिमा 2012, हजारी प्रसाद द्विवेदी।